Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब खुदा हमारे साथ है, अगर हमें इसकी रियलाइजेशन हो जाए तो कौन मेरे खिलाफ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर ईश्वर ही हमारे साथ है, जो इस पूरे विश्व नाटक रंगमंच का डायरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एक अथाह हिम्मत आ जाती है, जिससे हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच।
डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं मिड एज की, एक ऐसा समय जहाँ पर हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। तब तक हम चाहे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते हैं अपने शरीर को ध्यान रखने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा एज ग्रुप है जब हमें स्पेसिफिकली अपने हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पर शरीर साथ छोड़ने लगता है। ऐसे में कितना इम्पॉर्टेंट पहलू है हेल्थ का अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में, ये अगर आप हमें बता सके।
आज मैं कुछ मेडिकल सीक्रेट्स बताऊंगा।
जी श्योर, बिल्कुल।
जो कि आमतौर पे किताबों में नहीं लिखे जाते और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है समाज में बहुत कम है।
ओके।
दो तरह के बेसिक बीमारियां समझी जाती हैं। एक जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, या इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी उसमें हमारे शरीर के सिवा एक बाहरी एजेंट है। बैक्टीरिया है, वायरस है, जिसमें कि ट्यूबरकुलोसिस कह लीजिए, इन्फेक्शंस हर तरह की कह लीजिए, वायरल फीवर्स कह लीजिए, ट्रॉमा कह लीजिए, इंजरी लग गई किसी को, वो चीज़ें। दूसरी है जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। या लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। उनके अंदर हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिजीज़ का ये मतलब है कि हमारी जीवन शैली से जिस बीमारी पर असर पड़े।
अच्छा।
और वहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसका ये मतलब है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ही जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, उन प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई।
ओके।
इवन जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं,
जी,
उनके अंदर भी मान लीजिए एक व्यक्ति को मच्छर ने काटा और उसके काटने से कोई इन्फेक्शन हुई, दूसरे व्यक्ति को भी मच्छर ने काटा, उसके अंदर भी इन्फेक्शन हुई, लेकिन दोनों को बीमारी नहीं होती।
ओके।
ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर जैसे बात करें, तो आसपास उसके बैक्टीरियाज हैं, लेकिन दो व्यक्तियों को अलग अलग रूप से वो आती है, किसी को आती नहीं है और किसी को आती है।
ओके।
वहाँ पे हमारी इम्यूनिटी का, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति जो है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है।
करेक्ट।
हमारी इम्यूनिटी क्रिएट होती है हमारे खान पान से, और साथ ही साथ हमारे आचार और व्यवहार और विचार से। क्योंकि जो हम शरीर को गढ़ते हैं, उस गढ़ने में जो हमारे मन की स्थिति है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है।
करेक्ट।
जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर में लगता।
बिल्कुल।
जो हम हवा लेते हैं वही हमारे शरीर को गाइड करती है। लेकिन अगर गाइड करने वाले व्यक्ति को, जो कि हमारा मन है, सही दिशा नहीं है, तो फिर हमारा शरीर अच्छी तरीके से जो प्रोसेसेस करने चाहिए वो नहीं कर पाता।
ट्रू, बिल्कुल।
मिडिल लाइफ तक आते आते, एक्चुअली ये प्रोसेस बचपन से शुरू हो जाता। और अभी अगर आप आंकड़े देखें तो बच्चों में कई तरह की बीमारियां जो पहले सुनी नहीं जाती थी, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर्स, जुवेनाइल डायबिटीज जिसको कहते हैं, यानी हाई शुगर, एक उम्र से पहले की, वो बढ़ रही हैं। और उनके बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो हम अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं और जो तनाव से हम जी रहे हैं, वो चीज़ें उस सही प्रकार से शरीर को नहीं बना पा रहे।
करेक्ट।
साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी है। तो अगर हमारा मन सही नहीं है, कुछ हद तक हम संभाल पाते हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद जब वो विचार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशंस, पैनिक अटैक्स, फियर्स, फोबियाज, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं।
बिल्कुल।
और मन का और शरीर का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है।
ट्रू।
जब हम यंग होते हैं तो हम इन चीज़ों को कुछ हद तक सह सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उस समय बन रहा होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन धीरे 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 और चीज़ों से जूझते हुए, अपने शरीर का ना ध्यान रखते हुए, जब हम मिडिल एज में आते हैं तो उस समय में जेनेटिक पैटर्न एक चीज़ है, लेकिन वो शायद एक तिहाई से ज़्यादा नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करता। बाकी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो हमारी सोच है, किस प्रकार से हम अपने सारे दिन को चलाते हैं और किस प्रकार से हम नींद लेते हैं, उन सब में डिपेंड करता है कि वो बीमारी उभर के आएगी या नहीं।
ओके।
और वहाँ पे जो हमारे मन की स्थिति है, जो अब जैसा देखा जा रहा है कि सिर्फ मानसिक बीमारियाँ ही नहीं, वो तो बढ़ ही रही हैं, बहुत गुना बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटी छोटी मानसिक कष्ट, मैं कह दूँ,
अच्छा,
वो है मानसिक कष्टों में आपने मुझसे कुछ कहा, आप तो आगे निकल गए और मैं सोचता रहा। कोई बात हुई, मुझे गुस्सा आया, वो गुस्सा जिसने दिलाया था सो कॉल्ड, वो दिला के तो आगे निकल गया और मैं गुस्से में
अभी भी ट्रू
तैर रहा हूँ।
और ये बात इतनी सही है डॉक्टर साहब कि सामने वाला व्यक्ति शायद भूल भी चुका है, उन्हें याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। हम पकड़ कर बैठे रहते हैं, खास करके ये तो सभी एज ग्रुप्स में होता है। आई कांट से दैट एक स्पेसिफिक एज ग्रुप का ये प्रॉब्लम है, बट जैसे हम बात कर रहे हैं मिड एज की, मिड एज तक हम एक पर्सनालिटी क्रिएट कर चुके होते हैं हमारी खुद की। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमारे ईगो पर आता है, कई बार हम गुस्सा करते हैं, और क्यों गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमारे ईगो को हर्ट हुआ होता है। कहीं ना कहीं इस पर्सनालिटी को बदलना हम नहीं चाहते, जो हम खुद हैं। कोई भी आकर हमें कुछ सुना कर जाए, इस चीज़ का असर हम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में अपने आप को किस तरह से स्टेबलाइज रखा जाए?
देखिए, आपने सही कहा कि मिड लाइफ तक आते आते एक पर्सनालिटी बन जाती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो कुछ चीज़ें जो हैं वो देख देख के बच्चों में भी आनी शुरू हो जाती है। उन्हें भी कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बिना कारण के।
करेक्ट।
या उन्हें भी बहुत जल्दी, कई बार तो बहुत छोटे बच्चों को बहुत ये होता है कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, या मेरी बात नहीं सुनी, और उनमें भी जो रिएक्शन होते हैं वो वही हैं, और उनके शरीर पे भी वैसा ही असर डालते हैं जो कि बड़ों में डालते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन अगर शायद उनमें कभी कभार हो रहा है और अभी बॉडी यंग है तो इसलिए वो रिएक्शंस नहीं दिखते।
करेक्ट।
लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक चलते हैं तो उनमें भी वही रिएक्शंस शरीर पे असर वो दिखता है।
बिल्कुल।
मिडिल एज तक आते आते हम एक्चुअली प्रैक्टिस बहुत कर चुके हैं। हम अगर हर समय एक ईगो की स्थिति में कि मैं कौन हूँ, सारे लोग पहचाने, मेरी बात को हर व्यक्ति सुने, दूसरे को पता ही नहीं है कि क्या सुनना क्या सुनाना आप चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति मेरी बात को समझे और मेरे हिसाब से चले,
बिल्कुल,
या जो मैंने कहा वही सही है, या ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, ये जो कुछ सोचने के तरीके हैं, इन तरीकों से सबसे ज़्यादा कष्ट आपको होता
है। ओके।
जब भी ऐसा होता है और एक हल्की सी उसी के साथ में गुस्से की लहर आती है, तो गुस्से की लहर के साथ शरीर में इमीडिएटली कुछ रिएक्शंस होते हैं। हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, जिस वजह से हमारे हार्ट रेट बढ़ता।
करेक्ट।
साथ ही साथ क्योंकि वो ज़्यादा पंप कर रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता।
ट्रू।
उसी के साथ साथ अब हमारा पूरा सिस्टम जो है वो एक्सेलरेटर मोड पे आ गया, तो उस कारण से शुगर्स जो हैं वो बदन में निकलती हैं। और जब ऐसा होता है तो हम एक थकावट महसूस करते हैं, जिसको कि कम करने के लिए या तो इच्छा होती है बाहर से कुछ खाओ, ख़ास तौर पे मीठा, या शरीर के अंदर से ही वो बार बार शुगर की लेवल्स बढ़नी शुरू होती हैं। और अगर ये कांस्टेंट मोड में रहे तो वो धीरे धीरे जाकर जो इस उम्र की खास तोहफे हैं, मैं कहूँगा आज की ज़िंदगी के, हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर जिसको कि डायबिटीज़ कहते हैं
जी,
उसी के साथ साथ हार्ट को क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ रहा, और तनाव से या गुस्से से अचानक जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं वो एकदम सिकुड़ती हैं, तो उनमें ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है।
ओके,
तो उस वजह से हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है और उस वजह से हार्ट डिजीजेस का बढ़ना।
ओके,
उसी के साथ साथ कुछ और साइकोसोमेटिक इलनेसेस जिनको हम कहते हैं, जिनमें कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यानी बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा, या पेट में बहुत तेज़ दर्द होना, या जितनी बार खाना खाया उतनी बार टॉयलेट जाने की इच्छा, या पेप्टिक अल्सर जिसमें कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, सिर्फ इस कारण से नहीं कि आपने ज़्यादा मिर्चें खाई हैं या तला हुआ खाना खाया है या शराब पी है या सिगरेट पी है, लेकिन गुस्से से, टेंशन से भी एकदम सडन इंक्रीज होती है एसिड प्रोडक्शन में पेट के अंदर, और उस वजह से अगर वो ज़्यादा लगातार चल रहा है तो उसकी वजह से उस चीज़ का जलन होना, जिसको हम टेंशन हेडेक बोलते हैं, यानी ये पूरा जो सिर है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पूरा सिर जो है उसकी खिंचावट होना और उस खिंचावट से हमें दर्द महसूस होना,
तो ये गुस्से की वजह से होता है।
जब भी हम तनाव में आते हैं,
ओके,
वो चाहे गुस्से में हो या डर में हो, आमतौर पे हम समाज में गुस्सा देखते हैं,
बिल्कुल,
तो उस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं ये एकदम पूरा मसल जो है बॉडी के वो तन जाते हैं, लोअर बैक पेन खास तौर पे और सिर, या जिन लोगों को उम्र के साथ मिडिल एज में खास तौर पे ये जो मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स और पीछे के नेक मसल्स जिनको कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उसमें जो मसल्स हैं वो और अधिक खिंच जाते हैं और उस वजह से पेन्स होती हैं। जिन लोगों को माइग्रेन होने के चांसेस हैं उनके केस में वो माइग्रेन जो हैं वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मन स्थिति, खास तौर पे डिस्टर्ब्ड मन स्थिति से धीरे 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 शरीर पर असर आने के कारण से, शुरू में थोड़ी देर के लिए असर रहता है और वो बढ़ते 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 जब वो लगातार हो जाता है, या कई बार हम गुस्सा दिखाते नहीं हैं लेकिन गुस्सा आता है,
करेक्ट, सप्रेसिव वन,
तो वो जो सप्रेस्ड एंगर है,
करेक्ट,
और वो ज्यादा देर तक चलता,
बहुत टाइम तक, सालों तक, कई बार
सालों तक, और उसी चीज को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं रोज मन,
बिल्कुल बिल्कुल,
तो वो जो चलता है वो सप्रेस्ड एंगर जो है, और खासतौर पर अगर ऐसी स्थिति है कि आप किसी के ऊपर व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे लोगों को और गुस्सा आता है।
True.
तो वो जो है वो लगातार जब चलते रहते हैं तो वो व्यक्ति के शरीर पर खास तौर पे इन साइकोसोमेटिक इलनेसेस में बहुत ज़्यादा असर करते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें रिश्ते, ज़्यादातर जो रिश्ते हैं अपनी लाइफ के वो क्रिएट हो चुके होते हैं, मैक्सिमम बहुत कम लोग होते हैं फिर या तो दोस्त के रूप में आएंगे हमारे ज़िंदगी में या वर्क को वर्कर के रूप में हमारी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन जो एक परमानेंट रिश्ते होते हैं जिनके साथ हमें पूरी ज़िंदगी बितानी है, वो रिश्ते हमारे साथ ऑटोमेटिकली बन चुके होते हैं। हमें ऐसा लगता है कई बार कि एक बार वो क्रिएट हो गया है तो उसके पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई होती है तो उस चीज़ की हमें आकर्षण होती है, हम ज़्यादा समय उस चीज़ के साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये सब रिश्तों के साथ हमने ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी बिता ली होती है तो कहीं ना कहीं बातों की भी कमी हो जाती है कि क्या बात करें, बात भी करेंगे तो क्या बात करें, वही रोज़ की बातें। ऐसे में कई बार हमारे हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के साथ शेयर नहीं करते हमारी बातें। पहले जैसे जब नई नई किसी की शादी होती है तो हर बात हम अपने स्पाउस को बताते हैं, छोटी सी छोटी बात पूरे दिन की हम उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब वो बुज़ुर्ग जो इस स्टेज पर आ जाते हैं, या 35 to 40 की बात मैं करूँ या फिर 40 to 60 की बात करूँ, ये जो एज ग्रुप होता है इसमें आप अकेलेपन के शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे में अपने आप को स्टेबल कैसे रखा जाए?
देखिए, अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है
जी,
तो मैं ये नहीं मानता कि कोई बात करने की नहीं है। अगर रिश्ता अच्छा है
True.
और दूसरे ने साथ निभाया है, मान लीजिए आपकी गाड़ी आपके साथ 20 साल से है और उसने ज्यादा तंग नहीं किया, मेरे ख्याल से तो रोज उस गाड़ी को भी थैंक यू कहना चाहिए कि तुम कई जगह पे ब्रेक डाउन हो सकती थी, पंक्चर हो सकते थे, टूट सकती थी, तुमने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत अच्छी सवारी दी।
हाउ स्वीट, करेक्ट।
और अगर रिश्तों में ऐसा हो तो सिर्फ ये कहने में पूरी उम्र निकल सकती है कि तुमने मेरा कितना साथ दिया। कहने को तो बहुत कुछ है।
करेक्ट, दिस इज सो ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब।
एक्चुअली हम जो चीज नहीं होती या सही नहीं होती उसे पाने की या उसे ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो सही हो रहा है उस चीज के शुक्रगुजार होने में, ग्रेटिट्यूड देने में
Correct.
हम थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं।
So true.
तो इसीलिए हमें हर चीज जो है जो सही नहीं है वो लार्जर देन लाइफ लगती है, और जो चीजें ठीक हो रही हैं, और हम में से हर कोई अगर ये एक्सपेरिमेंट करे उस लिस्ट को बनाने की, किस किस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता।
माय गॉड, आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट, मैं यही बोलने वाली थी अभी कि थोड़े दिनों पहले ही हमने एक दूसरे स्पीकर के साथ में डिस्कशन किया था, जो मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, कि अगर हम एंड ऑफ द डे बैठकर लिखें कि हम किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है पूरे दिन में, तो हमें पता चलेगा कि हमें ईश्वर ने इतना कुछ दिया है जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करते करते थकते नहीं हैं। इतनी चीज़ें हमें मिली है ज़िंदगी में, तो जो छोटी मोटी चीज़ें नहीं भी मिली हैं वो नज़रअंदाज हो जाएंगी।
एक्चुअली जो चीज़ नहीं मिली है
जी,
कई बार वो इसलिए नहीं मिली है कि शायद उसकी मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, या उसके मिलने से जो मुझे कष्ट हो सकते थे
करेक्ट
उनसे मैं बच गया।
So true.
हर चीज को जब हम, और ये भी एक ईगो का हिस्सा ही है, कि हम समझते हैं कि जो हमने डिसाइड किया वही यूनिवर्स मेरे लिए चाहता है, पर शायद अगर आप यूनिवर्स को सीरियसली बैठ के बातचीत करें उसके साथ कि मुझे क्या जरूरत है और आप मुझे क्या दे रहे हैं, तो पता लगेगा कि जो नहीं मिल रहा है उसमें भी कोई राज छुपा हुआ है।
करेक्ट।
तो जब आप उस रूप से देखते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मन स्थिर होता है तो शरीर में जिन चीजों का सही प्रवाह होना चाहिए वो होने शुरू हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई भयंकर बीमारी है, आज से आपने सोच अपनी बदली तो कल से वो बीमारी खत्म हो जाएगी, शायद ना हो, लेकिन उससे जूझ पाने की जो शक्ति है
जी,
एक तो वो बढ़ जाती है। दूसरा ये भी पाया गया है कि जो दवा हम कर रहे हैं उस दवा का हमारे शरीर पर लगना ज्यादा हो जाता है।
अच्छा।
क्योंकि आफ्टर ऑल जो मेडिसिन है वो मेडिसिन मेरे शरीर का हिस्सा बन रही है ना, तो उसको गाइड करना कि उसने कहाँ जाके क्या काम करना है वो भी तो मेरा मन कर रहा है ना। तो मेरा मन अगर सशक्त स्थिति में है तो एक्चुअली मेडिसिन को अच्छा गाइड कर सकता है कि आपने कहाँ जाके क्या काम करना है।
Really? इतना फर्क पड़ता है?
That is the truth. क्योंकि मेडिसिन की अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, मेरी इंटेलिजेंस उस मेडिसिन को यूज करती है मेरी बीमारियों से लड़ने में।
This is an awakening information, मेरे हिसाब से।
That is the true medical information.
Wow. Okay.
There is something called placebo effect.
Placebo.
Placebo.
Okay.
Placebo का मतलब है आई प्लीज। जब हम किसी को दवा देते हैं
जी,
और शायद उस दवा में कोई भी रियल दवा नहीं होती, वो सिर्फ एक पिल होती है जिसमें या तो शुगर होती है या कुछ भी नहीं होता, और वो व्यक्ति लेता है और उसे लगता है कि इसको लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसके शरीर की अंदर की छुपी हुई जो ताकतें हैं वो ताकतें उभर के आनी शुरू हो जाती हैं और काफ़ी हद तक, और ये परसेंटेज छोटी परसेंटेज नहीं है, करीबन 30-40% केसेस या 30-40% तक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। और इसके ऑपोजिट है जिसको कहते हैं नोसिबो इफेक्ट, जिससे कि व्यक्ति ये समझ के कि जो मैं ये ले रहा हूँ इससे मुझे कोई नुकसान होगा ये, या इससे मुझे एलर्जी होगी, उसका शरीर उसी रूप में रिएक्ट करता। तो मन की पावर्स जो हैं वो अथाह हैं, अपने आप को ठीक कर पाने के या अपने आप को बिगाड़ पाने के। जब हम उसे बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक मोड पे चलने देते हैं और उसी के साथ अंदर थोड़ा सा ईगो का मसाला,
थोड़ा
और
का
एंगर का तेल डाल देते हैं, तो वो जो तड़का लगता है ना, वो तड़का है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है।
बिल्कुल।
और एक्चुअली ज़्यादातर लोग भी ये खुद देखेंगे कि देखिए 100 साल पहले तक कोई पावरफुल एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी।
ओके।
और जो इलाज थे वो इलाज वो थे जिससे कि मन को और शरीर को शांति मिले। पहाड़ों में चले जाएं, अच्छा खाना खाएं, वॉक पे जाएं, दूसरों के साथ संबंध बेटर करें, जो जो मन में तनाव है उसे कम करें, मसाजेस करें, रिलैक्सेशन करें, मेडिटेशन करें। कुछ वर्षों पहले तक ये इलाज माने जाते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, मेडिसिन आई, जिसने कि बहुत अच्छा काम किया बीमारियों से कुछ हद तक लड़ने में, स्पेशली कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़। लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा हिस्सा था
जी,
अपने आप को ठीक करने का
जी,
अपने आप को रिलैक्स करने का, अपने आप को किसी हायर पावर के साथ जोड़ने का
जी,
अपने आप के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल करने का
जी,
एक रिलैक्स स्टेट में रहने का, दूसरों के साथ संबंध बेटर करने का, ये सब चीज़ें सिर्फ हवाई नहीं है, इन सब से हमारे शरीर और मन के ऊपर बहुत ज़्यादा सकारात्मक सेहत के रूप में भी असर होता है। सो आज के समय में एक्चुअली बहुत सारे जगहों पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम क्या ऐसा कर सकें कि ये जो मिड लाइफ की लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उन डिजीज़ को कम करने के लिए महंगी दवाइयों के सिवा या महंगी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जहाँ वो ज़रूरी है वहाँ उसको अपनाएं, लेकिन बाकी समय तक हम अपने को ठीक रखकर उनको आने से बचाएं, और अगर आ गई हैं तो ठीक करने में इस्तेमाल करें
जी।
और वहाँ पर जो एज ओल्ड प्रिंसिपल जिनको कहा जाता है कि खुश रहना, एक दूसरे के साथ संबंध बेटर करना, ईगो को, एंगर को, जेलसीज को, वो जो 5 विकार जिनको कहा जाता था, अब भी कहा जाता है, उनको थोड़ा सा अलग रखना, और रोज़ अपने आप को
जी
अपनी सेहत के लिए ज़िम्मेवार बनाना, और उसमें सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट ही नहीं, लेकिन जो मन की डाइट है मेरे विचार इमोशंस, और जो तन की डाइट है सही भोजन, सही रूप से सही माहौल में खाना, और रात को सही रूप से सही विचारों के साथ सोना, और जब कोई चीज़ मेरे मन को तंग करती है उसको पहचान के साइड पे कर देना, वो भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हमने अपनाया नहीं है जितना कि हमें अपनाना चाहिए।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। आज का जो हमारा एपिसोड रहा है मेरे हिसाब से बहुत ही नॉलेजफुल रहा है। हमने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जिसे अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो हमारे पूरे हेल्थ पर, हमारे पूरी लाइफस्टाइल पर उसका असर पड़ता है। हमने ये जाना कि अगर हम जिंदगी को सही तरीके से जिए, जो गलतियां हम करते हैं चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे मन से रिलेटेड हो, चाहे एंगर, ईगो, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कहीं ना कहीं अपने आप से दूर रखने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो मिड एज होता है उसके अंदर में हमने ये जाना कि अगर हम ज़िंदगी को नए तरीके से जीना सीखें, हर दिन जैसा है उसे वैसे ही लें, तो हम एक बेहतर भविष्य क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
थैंक्स अ लॉट, ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने उन बातों पर चर्चा की जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूल सा गए थे। मिड एज में कहीं ना कहीं एक ऐसा समय होता है जहाँ पर हमें अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा शरीर बदल रहा होता है और हम धीरे धीरे बुजुर्ग होने की कगार पर होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जिन्हें हम बदल भी सकते हैं, उनमें उनसे बाहर निकल सकते हैं, बस एक थोड़ी सी पहल करने की ज़रूरत है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।